यहेस्केल अध्याय 11। आइए यहेस्केल अध्याय 11 देखें। अब तक तो यहेस्केल मंदिर के उत्तरी फाटक को देख रहा था, परंतु अध्याय 11 का आरंभ उसे पूर्वी फाटक पर लाता है। यद्यपि यहेस्केल इन भविष्यवाणियों के समय बाबुल में है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसे उठाकर यरूशलेम ले जाता है और वहां उसे यरूशलेम में हो रहे कुकर्मों को दिखाया है। कुछ यहूदी राष्ट्रवादी जो यरूशलेम में ही रह गए थे, उन्होंने नबूकदनेस्सर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। वे सोच रहे थे कि अपने इस अभियान में वे सफल हो जाएंगे। वहां कुछ झूठे भविष्यद्वक्ता भी थे जो उन्हें विद्रोह के लिए ये कहकर प्रेरित करते थे कि वे नबूकदनेस्सर को पीछे हटाने में सफल हो जाएंगे। यिर्मयाह तो यरूशलेम में ही था और उनसे कहता था कि वे इन झूठे भविष्यद्वक्ताओं की बातों में ना आए। वे परमेश्वर के नाम में झूठी भविष्यवाणी देते हैं। बाबुल के सम्मुख आत्मसमर्पण करने में ही उनकी भलाई है। यदि विरोध किया गया तो तलवार, महामारी और भूखमरी उनका नाश कर देंगे। इस भविष्यवाणी के कारण यिर्मयाह पर देशद्रोही का दोष चलाकर राजा सिदकिया ने उसे बंदी बना लिया था। इन विद्रोहियों ने बाबुल में भी झूठे भविष्यद्वक्ताओं को भेजकर लोगों को बहकाया कि यरूशलेम के निवासी शीघ्र ही नबूकदनेस्सर को हरा देंगे और वो उन्हें अपने देश लौटा देगा। अतः वो यरूशलेम लौटकर वही वास करेंगे और उन्हें बाबुल में बसने की आवश्यकता नहीं है। उनकी मुक्ति दूर नहीं है। परंतु यहेस्केल तो उनके बीच में ही था और कहता था कि वे वहां बस जाएं, क्योंकि उनकी मुक्ति में बहुत समय लगेगा। वे ये जान ले कि यरूशलेम वासी और झूठे भविष्यद्वक्ता नाश किए जाएंगे। यहां भविष्यवाणियों कुछ असमंजस में डालने वाली थी, क्योंकि एक ओर तो झूठे भविष्यद्वक्ता ये भविष्यवाणी कर रहे थे कि शीघ्र ही बाबुल का पतन होगा और दूसरी ओर बाबुल में यहेस्केल और यरूशलेम में यिर्मयाह भविष्यवाणी कर रहे थे कि यरूशलेम बाबुल पर विजयी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर इसराइल जाति को अधर्म और पापों का दंड दे रहा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का त्याग किया है और उनके दंड का समय बहुत लंबा होगा। इसलिए समय का सदुपयोग करो और वहीं बस जाओ तो अच्छा होगा। यिर्मयाह ने उन्हें ये भी बताया, उनके दंड का समय 70 वर्ष होगा, अर्थात उन्हें बाबुल में 70 वर्ष रहना होगा। अतः वे वहीं बस जाएं तो अच्छा होगा। वे हर परिस्थिति का लाभ उठाएं और निकट भविष्य में घर लौटने की आशा को छोड़ दें। यहेस्केल बाबुल में है, परंतु परमेश्वर का आत्मा उसे बार बार उठाकर यरूशलेम ले आता है कि वो देखे वहां क्या हो रहा है और बाबुल में रह रहे लोगों से तुलना करे। यहां ऐसी ही एक और घटना है। यहेस्केल अध्याय 11 पद 1। तब आत्मा ने मुझे उठाकर यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक के पास, जिसका मुंह पूर्वी दिशा की ओर है, पहुंचा दिया। और वहां मैंने क्या देखा कि फाटक ही में 25 पुरुष है, और मैंने उनके बीच अजूर के पुत्र यजनाया को, 25 लोगों में उपस्थित यजनाया, वो यजनाया नहीं जिसे उसने पहले के दर्शन में देखा था, वो शालमान का पुत्र था, परंतु ये यजनाया अजूर का पुत्र है। वहां तो एक ही नाम के अनेक जन थे। यहेस्केल अध्याय 11 पद 1 से लेकर 3 तक। और बनाया के पुत्र पलतया को देखा जो प्रजा के प्रधान थे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो मनुष्य इस नगर में अनर्थ कल्पना और बुरी युक्ति करते हैं वे यही हैं। ये कहते हैं, घर बनाने का समय निकट नहीं, ये नगर हंडा और हम उसमें का मांस है। ये भी ना समझा जाए कि विनाश अति निकट है। वे कहते थे कि यरूशलेम नगर हांडे के समान है, जो हमें बाबुल की आग से बचाकर रखेगा। इसमें वास करते हुए हम बाबुल से सुरक्षित हैं। बाबुल की अग्नि निश्चय ही जलाने वाली है, परंतु वो हमें नहीं जलाएगी, क्योंकि ये नगर हांडा और हम उसमें का मांस है। उस आग को हम तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा, इसलिए हम मकान बना ले और निश्चिंत हो इसमें वास करें, क्योंकि ये नगर बाबुल से हमारी रक्षा करेगा। एहेस्केल अध्याय 11 पद 4 और 5। इसलिए हे मनुष्य के संतान, इनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर, भविष्यवाणी। तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा और मुझसे कहा, ऐसा कह, यहोवा यूं कहता है, हे इसराइल के घराने, तुमने ऐसे ही कहा है, जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूं। ये ध्यान देने योग्य बात है, जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूं, उससे कुछ नहीं छिपा है, वो हर एक विचार जानता है। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है, इब्रानियों अध्याय 4 पद 13, सृष्टि की कोई वस्तु उसे छिपी नहीं है। जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूं। एहेस्केल अध्याय 11 पद 6, तुमने तो इस नगर में बहुतों को मार डाला, वरन उसकी सड़कों को लोथों से भर दिया। उनके झूठे प्रोत्साहन के कारण यहूदी प्रजा विद्रोह करेगी और नतीजा ये होगा कि लाशों के ढेर लग जाएंगे। यरमिया ने इसी कारण कहा था कि आत्मसमर्पण कर दो, जिससे कि तुम लोग यहां नहीं तो बाबुल में तो आराम से जीवित रहोगे, अन्यथा मारे जाओगे। परंतु इन दुष्टों ने झूठ बोल बोलकर उन्हें मौत के मार्ग में खड़ा कर दिया। एहेस्केल अध्याय 11 पद 7, इस कारण प्रभु यहोवा यूं कहता है कि जो मनुष्य तुमने इसमें मार डाले हैं उनकी लोते ही इस नगर रूपी हांडे में का मांस है, और तुम इसके बीच से निकाले जाओगे। जो मारे गए हैं वही वास्तव में हांडे का मांस है, जो बाबुल रूपी अग्नि से सुरक्षित है, परंतु तुम जो जीवित हो निश्चय ही बंदवाई में बाबुल ले जाए जाओगे। एहेस्केल अध्याय 11 पद 8 से लेकर 10 तक, तुम तलवार से डरते हो और मैं तुम पर तलवार चलाऊंगा, प्रभु यहोवा की ये वाणी है। मैं तुमको इसमें से निकालकर परदेशियों के हाथ में कर दूंगा और तुमको दंड दिलाऊंगा। तुम तलवार से मर कर गिरोगे और मैं तुम्हारा मुकदमा इसराइल के देश के सिवाने पर चुकाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। रोचक भविष्यवाणी, मैं तुम्हारा मुकदमा इसराइल के देश के सिवाने पर चुकाऊंगा। बाबुल सेना ने जब इसराइल पर आक्रमण किया तब नेबुकदनेस्सर सीमांत प्रदेश रिबला में ही रुका रहा था। वहां यहूदियों को उसके सामने न्याय के लिए प्रस्तुत किया गया था। आपको ध्यान होगा कि नेबुकदनेस्सर ने रिबला में ही सिदकिया का न्याय किया था और उसके दोनों बेटों को मारकर उसकी आंखों को फुड़वाकर उसे बंदी बनाकर बाबुल ले गया था। देखिए, एहेस्केल बाबुल प्रदेश में है और उसे स्वयं तो कुछ नहीं मालूम कि यरूशलेम में क्या हो रहा था, परंतु परमेश्वर का आत्मा उसे वहां ले जाकर सब कुछ पहले ही दिखा देता है। ये सच है कि इतिहास में ऐसा ही हुआ। एहेस्केल अध्याय 11 पद 11, ये नगर तुम्हारे लिए हांडा ना बनेगा, यरूशलेम तुम्हारे लिए हांडा ना बनेगा कि तुम्हें बाबुल की आग से बचाए। एहेस्केल अध्याय 11 पद 11 में आगे लिखा है, और ना तुम इसमें का मांस होंगे, मैं तुम्हारा मुकदमा इसराइल देश के सिवाने पर चुकाऊंगा। यहां फिर वही वचन है कि इसराइल की सीमा पर परमेश्वर न्याय करेगा, और इतिहास में ऐसा ही हुआ। एहेस्केल अध्याय 11 पद 12, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं, तुम तो मेरी विधियों पर नहीं चले। परमेश्वर उन पर आरोप लगाता है, तुम मेरी विधियों पर नहीं चले। एहेस्केल अध्याय 11 पद 12 में आगे लिखा है, और मेरे नियमों को तुमने नहीं माना, परंतु अपने चारों ओर की अन्य जातियों की रीतियों पर चले हो। उन्होंने बहुमत को चुना, यहोवा को नहीं, वे दुनिया की रीति पर चले, परमेश्वर की नहीं। यही उनका अपराध था। आज हमारी भी यही हालत है, हम परमेश्वर की विधियों की हत्या करके दुनिया की रीति पर चलते हैं। यदि आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार सामाजिक कुरीतियों का तिरस्कार करते हैं, तो समाज आपको धार्मिक मूर्ख, शर्मीला और पिछड़ा कहता है। वे कहते हैं, समय बदल गया है, हम घाघरा चोली नहीं पहनेंगे, और आप पर एक प्रकार का दबाव है। परंतु किस लिए? परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों का त्याग करने के लिए आप बाध्य किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इसराइल ने किया। आप संसार से समझौता कर लेते हैं, परिणाम क्या हुआ? दंड। दुनिया की रीति पर मत चलो, क्योंकि परमेश्वर हमारा न्याय भी उसी रीति से करेगा जिस रीति से उसने इसराइल के घराने का किया था। एहेस्केल अध्याय 11 पद 13, मैं इस प्रकार की भविष्यवाणी कर रहा था कि बनाया का पुत्र पलतया मर गया, एक प्रभावी प्रचार का परिणाम कि वो मर गया। एहेस्केल अध्याय 11 पद 13 में आगे लिखा है, तब मैं मुंह के बल गिरकर, एहेस्केल ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, ये उसके लिए चौंकाने वाली बात थी। एहेस्केल अध्याय 11 पद 13 में आगे लिखा है, तब मैं मुंह के बल गिरकर ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा और कहा, हाय प्रभु यहोवा, क्या तू इसराइल के बचे हुओं को सत्यनाश कर डालेगा? हे प्रभु, क्या तू सबका नाश कर देगा? एहेस्केल अध्याय 11 पद 14 और 15, तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, यरूशलेम के निवासियों ने तेरे निकट भाइयों से वरन इसराइल के सारे घराने से भी कहा है कि तुम यहोवा के पास से दूर हो जाओ, ये देश हमारे ही अधिकार में दिया गया है। वे कहने लगे कि ये हमारा देश है, हम नहीं हारेंगे, हमारा पतन नहीं होगा। एहेस्केल अध्याय 11 पद 16, परंतु तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मैंने तुमको दूर दूर की जातियों में बसाया और देश देश में तितर बितर कर दिया है, तो भी जिन देशों में तुम आए हुए हो उनमें मैं स्वयं तुम्हारे लिए थोड़े दिनों तक पवित्र स्थान ठहराऊंगा। यद्यपि वे निर्वसित हो गए, परंतु परमेश्वर ने कहा, मैं स्वयं तुम्हारे लिए थोड़े दिनों तक पवित्र स्थान ठहरूंगा, अर्थात तुम्हारी सुधि लेता रहूंगा, मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं। यहां एक अद्भुत भविष्यवाणी है, क्योंकि 2000 वर्ष तक यहूदियों ने सबसे अधिक घृणा, निंदा का, पक्षपात का सामना किया, परंतु वे आज भी एक विशिष्ट जाति बने हुए हैं। आज विश्व में ऐसी कोई जाति नहीं जो भेगर होकर 5 पीढ़ी से अधिक जीवित रही हो। ये परमेश्वर का चमत्कार ही है। यही कारण है कि आज इसराइल को छोड़ कोई और जाति अपने देश का दावा नहीं करती है। अमोरी, हिती, कसदी आदि जातियां कभी शक्तिशाली होती थी, आज देखने को भी नहीं मिलती। परंतु यहूदी आज भी है। इसका एक ही कारण है कि यहोवा उनका पवित्र स्थान है। वो उनकी 2000 वर्ष से सुधी लेता आ रहा है। नेबुकदनेस्सर की बंदवाई के बाद कुछ समय के लिए वे अपने देश लौट आए थे, परंतु सन 70 में वे पुनः तितर बितर किए गए थे। परंतु यहूदी चाहे चीन, जर्मनी, रूस, यमन, अफ्रीका या अमेरिका में है, उनकी अपनी पहचान है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें एक पवित्र स्थान बनाया हुआ है। और आप उसकी व्याख्या उसी तथ्य के आधार पर करते हैं। अन्य किसी प्राचीन जाति की अपनी पहचान आज नहीं है। परमेश्वर ने उन्हें वचन दिया था और वो उन्हें पवित्र स्थान बनाएगा, और उसने अपना वचन निभाया। एहेस्केल अध्याय 11 पद 17। इसलिए उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको जाति जाति के लोगों के बीच से बटोरूंगा, और जिन देशों में तुम तितर बितर किए गए हो उनमें से तुमको इकट्ठा करूंगा और तुम्हें इसराइल की भूमि दूंगा। ये पद बाबुल से लौट आने के विषय न होकर उनके आज अपने देश लौट आने की भविष्यवाणी है। एहेस्केल अध्याय 11 पद 18 और 19। और वे वहां पहुंचकर उस देश की सब घृणित मूर्तें और सब घृणित काम भी उसमें से दूर करेंगे, और मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। ये भविष्यवाणी अभी पूरी नहीं हुई है। यद्यपि परमेश्वर उन्हें वापस अपने देश में ले आया है और बचे हुओं को भी ला रहा है, ये प्रतिज्ञा अभी पूरी होनी बाकी है। ये तब पूरी होगी जब परमेश्वर इसराइल पर रूस के आक्रमण को विफल करेगा। इस विषय में एहेस्केल अध्याय 39 में दिया गया है, जहां वो कहता है कि अंतिम दिनों में जब पृथ्वी का समस्त जातियों के सामने वो इसराइल को पवित्र करेगा और फिर से इसराइल जाति पर अपना आत्मा उंडेलेगा। अतः ये एक भावी भविष्यवाणी है जब परमेश्वर नाटकीय ढंग से अपने आप को इसराइल पर प्रकट करेगा और उन पर अपना आत्मा उंडेलेगा। एहेस्केल अध्याय 11 पद 19 में आगे लिखा है, और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। प्रेरित पौलुस नए नियम में लिखता है कि इसराइल की आंखों पर तब तक पर्दा रहेगा जब तक अन्य जातियां प्रभु में प्रवेश नहीं कर जाती। आज परमेश्वर का आत्मा मुख्य रूप से अन्य जातियों में काम कर रहा है, जो आप है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है। ऐसा नहीं सोचिए कि यहूदी बाहर है, क्योंकि वे केवल मसीह यीशु के प्रति राष्ट्रीय रूप से अंधे हैं। मुझे उनमें से धर्मशास्त्रों के कुछ एक ज्ञाताओं से बातें करने का अवसर प्राप्त हुआ। आश्चर्य की बात तो यह है कि धर्मशास्त्रों का महान ज्ञान रखते हुए भी वे यीशु को क्यों अभिषिक्त मसीहा के रूप में नहीं देख पाते हैं। अचंभा तो इस बात पर होता है कि वे अपने ही भविष्यत वक्ताओं की भविष्यवाणियों के प्रति अंधे हैं, जैसे दानियल अध्याय 9, यशाया अध्याय 53, भजन संहिता 22, जकरिया अध्याय 11 और 12 आदि। हमारे अचंभा करने का एक ही उत्तर है जो पौलुस देता है, कि उन लोगों की आंखों पर पर्दा पड़ा है। कुछ समय पूर्व मैं इसराइल में एक सद्भावना सम्मेलन को संबोधित कर रहा था जिसमें संपूर्ण विश्व के मसीही जन सम्मिलित हुए थे कि इसराइल को ये दर्शाए कि हम उनके साथ हैं। मुझे एक राबी ने पत्र लिखकर झिड़का कि मैं क्यों सम्मेलन में आया और हम क्यों इसराइल राष्ट्र को सहयोग दे रहे हैं। उसने लिखा, तुम्हें यहां उपस्थित होने का कोई अधिकार नहीं है और ना ही इसराइल को एक राष्ट्र होने का। इस रबी ने जॉर्डन के राजा हुसैन को भी पत्र लिखकर निवेदन किया था कि वो मेश्रिम को जॉर्डन से जोड़ ले, क्योंकि वे आज के इसराइल राष्ट्र से संबंध रखना नहीं चाहते हैं। उसने लिखा, इसराइल को राष्ट्र होने का कोई अधिकार नहीं है और एक मसीही सेवक होने के कारण आपको यहां आकर इसराइल राष्ट्र को सहयोग देने का अधिकार भी नहीं है। मैं वहां के गाइडों के संपर्क में था और उन्हें मसीह के विषय बताता था। उन्हें भी धर्मशास्त्र का पूरा पूरा ज्ञान है। मैंने उन्हें पत्र दिखाते हुए कहा कि वो उनके एक रबी ने भेजा है। वे पत्र पढ़कर विचलित हुए, क्योंकि वे जानते थे कि मैं इसराइल का शुभ चिंतक हूं। उन्होंने कहा, ध्यान मत दीजिए चक, वे रूढ़िवादियों का एक समूह है, वे अतिवादी हैं, वे खुद नहीं जानते कि वे क्या कह रहे हैं, उन पर ध्यान मत दीजिए। मैंने कहा, परंतु वो एक रबी है, तो क्या हुआ वे सभी मूर्ख हैं। मैंने कहा, क्या आपने कभी सोचा है कि जिन रबियों ने मसीह यीशु को अस्वीकार किया था वे इसी रबी के समान हठधर्मी थे, और आप आज 2000 वर्षों बाद भी सब प्रमाणों को देखने के उपरांत उन रूढ़िवादी रबियों के अनुसार कर रहे हैं। उनके पास कोई उत्तर नहीं था। ये तो एक तथ्य है कि जो भी भविष्यवाणियों को पढ़कर यीशु के जीवन का विश्लेषण करेगा तो यही कहेगा कि यदि यीशु मसीह नहीं है तो फिर कोई भी मसीहा नहीं होगा। आज उनमें कोई नहीं है जो ये प्रमाणित कर सके कि वो दाऊद का वंशज है, क्योंकि किसी के पास अपनी वंशावली नहीं है। यही कारण है कि परमेश्वर उनके हृदय को बदल देने की बात कहता है। अब उनमें मांस का हृदय होगा। आप यहूदियों के बारे में एक बात जानते हैं कि वे बहुत सामर्थी और जीवंत लोग हैं। वे नाच गाकर अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करते हैं। वहां प्रायः ऐसा होता है कि गाइड और बस चालक ढाबों में टेबल पर बैठकर अपने यहूदी गाने गाना आरंभ कर देते हैं और धीरे धीरे वे उठकर नाचने लगते हैं। उनके साथ रहना बड़ा ही आनंद का समय होता है। मैं यीशु के प्रति उनके मन परिवर्तन की प्रतीक्षा नहीं कर पा रहा हूं। अपने उत्साह और भावना प्रदर्शन के साथ यदि वे सच्चे मसीहा को पालें तो वो महान दिन उनमें मांस का हृदय लगाए जाने का दिन होगा। परमेश्वर हृदय प्रत्यारोपण चिकित्सा करके उनमें मांस का हृदय रोपित करेगा। एहेस्केल अध्याय 11 पद 20, जिससे वे मेरी विधियों पर नित चला करें। उन्होंने यही तो नहीं किया था और उन्हें दंड दिया गया था। एहेस्केल अध्याय 11 पद 20 और 21, और मेरे नियमों को माने और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। परंतु वे लोग जो अपनी घृणित मूर्तों और घृणित कामों में मन लगाकर चलते रहते हैं, उनको मैं ऐसा करूंगा कि उनकी चाल उन्हीं के सिर पर पड़ेगी। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। करूब परमेश्वर की महिमा और उपस्थिति को प्रकट करते हैं जो कभी मंदिर में होती थी, परंतु अब वो मंदिर से निकलकर आंगन में और आंगन से निकलकर पूर्वी दरवाजे पर चली गई और तब उसने देखा कि परमेश्वर का आत्मा पूर्वी दरवाजे से निकलकर यरूशलेम के पूर्व में जैतून के पहाड़ पर चला गया। एहेस्केल अध्याय 11 पद 22 से लेकर 25 तक। इस पर करूबों ने अपने पंख उठाए और पहिए उनके संग संग चले और इस्राएल के परमेश्वर का तेज उनके ऊपर था। तब यहोवा का तेज नगर के बीच में से उठकर उस पर्वत पर ठहर गया जो नगर के पूर्व ओर है, जैतून पर्वत में। फिर आत्मा ने मुझे उठाया और परमेश्वर के आत्मा की शक्ति से दर्शन में मुझे कसदियों के देश में बंधुओं के पास पहुंचा दिया, और जो दर्शन मैंने पाया था वो लोप हो गया। तब जितनी बातें यहोवा ने मुझे दिखाई थी वे मैंने बंधुओं को बता दी। अब वो आत्मा द्वारा वापस बाबुल लाया जाता है और वो बंधुओं को अपना दर्शन बता देता है। ये बड़ी ही रोचक बात है कि परमेश्वर की महिमा मंदिर से निकलकर पूर्व में स्थित पर्वत की ओर गई थी। यीशु भी यरूशलेम में शोभा यात्रा पर प्रवेश करते समय इसी पर्वत पर बैठा था जिसकी जकरिया ने भविष्यवाणी की थी। जकरिया अध्याय 9 पद 9। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। यीशु का स्वर्ग आरोहण भी इसी पहाड़ से हुआ था तथा उसका पुनः आगमन भी इसी पहाड़ पर होगा। जकरिया ने कहा, जकरिया अध्याय 14 पद 4, और उस समय वो जलपाई के पर्वत पर पांव धरेगा जो पूरब और यरूशलेम के सामने है। तब जलपाई का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड हो जाएगा और वहां से वो विलोप हो गए। अब वो महिमा मसीह यीशु के रूप में फिर से उसी मार्ग से आएगी और यरूशलेम में प्रवेश करेगी। तब परमेश्वर के राज्य के वैभव की स्थापना होगी।